Legal.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، مارک قرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور ابھی بھی آیات نمبر 114، 15، 16 اور 117، ان کے معرف و مسائل ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں. جمعے کے درس کے اندر بھی ہم نے اسی آیت کی تفسیر پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں ان سے مراد دو قسم کے کلمے، ایک جو ہے وہ جو گزشتہ قوموں کے، ماضی کے قوموں کے احوال ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کیسے حالات آئے، تو یہ یعنی جس کو کہ ہسٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ، تو یہ ایک قسم کے کلمات ہیں. اور دوسرے قسم کے کلمات قرآن مجید میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں جو ہیں وہ صادق ہیں، اور بلکہ صدق کا جو لفظ ہے وہ تو ماضی کے حالات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی انہی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سچے ہیں. اور جو احکامات ہیں تو ان کے لیے عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عدل کی بھی تعریف بیان کری کہ عدل جو ہے وہ ایک معنی اس کا انصاف ہوتا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے اور جتنا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ عدل کا ایک معنی. عدل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ معتدل، بیلنسڈ، ٹھیک ہے؟ نہ زیادہ نہ کم، نہ اس ایکسٹریم پر نہ دوسری ایکسٹریم پر، بلکہ بالکل جو میانہ روی کے راستے پر ہوتے ہیں اور بالکل اعتدال کے راستے پر ہوتے ہیں نا، وہ، ٹھیک ہے؟ تو عدل کے دو معنی ہو گئے. تو اب اس کے بعد حضرت نے یہ بات لکھی کہ یہ پیج نمبر 429 تفسیر کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، شکر خدا اسی کی بہت آواز تھی، تو آپ کو شاید نہ بھی آ رہی ہو لیکن میرے ذہن میں بج رہی تھی. بہرحال، تو حضرت مشفی رحمۃ اللہ علیہ صفحے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ بات کہ تمام قرآنی احکام تمام اقوام دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں اور بدلنے والے حالات کے لیے انصاف پر مبنی ہو، اور اعتدال پر بھی، انصاف اور اعتدال پر، یعنی کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم لگایا نا، ٹھیک ہے؟ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم، تو یہ جو ہے نا وہ یہ نمازوں کا حکم یہ انصاف پر مبنی ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ انصاف پر مبنی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شکل میں دن میں 5 وقت نماز پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم بھی دیا کہ بھئی میرا یہ حق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا نا کہ میرا یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی انسان نے تو طے نہیں کیا کہ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، کسی انسان نے تو نہیں یہ طے کیا نا کہ اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں اس لیے ہم 5 نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے، نہیں، کسی انسان نے یہ طے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود طے کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اللہ کا حق بن گیا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کا حکم آیا کہ بھی 5 نمازیں پڑھو، تو یہ جو جو اس حکم پہ عمل کرے گا وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا کہلائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اللہ کا حق नहीं अदा करने वाला कहलाएगा। ठीक है, तो इंसाफ पर मबनी है, यानी यही अल्लाह का हक है, और दूसरा ये कि एतदाल पर भी मबनी है। ये अगर जरा भी गौर किया जाए तो सिर्फ अहकाम खुदाबंदी ही में हो सकता है। दुनिया की कोई कानून साज असेंबली, यानी कानून बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको आप अंग्रेजी में असेंबली का नाम दें या पार्लियामेंट का नाम दें, या उसको जो है वो उर्दू में आप कोई मजलिस शूरा का नाम दें, ठीक है, जो भी नाम दें आप, लेकिन लोगों की एक जमात है, वो इकट्ठी होकर के ना तय करें कि भाई ये हुक्म होना चाहिए, ये हुक्म होना चाहिए। तो भाई वो मौजूदा जमाने के लिए तो शायद कुछ हुक्म प्रॉपर बना भी सकें, लेकिन आइंदा पेश आने वाले हालात तो उनको नहीं पता ना। तो आइंदा पेश आने वाले हालात का कोई भी कानून साज असेंबली ना पूरा अंदाजा लगा सकती है और ना उन सब हालात की रियायत करके कोई कानून बना सकती है। हर मुल्क और कौम अपने मुल्क और अपनी कौम के भी सिर्फ मौजूदा हालात के पेश नजर कानून बनाती है, और इन कवानीन में भी तजुर्बा करने के बाद बहुत सी चीजें अदल व एतदाल के खिलाफ महसूस होती हैं, तो उनको बदलना पड़ता है। ठीक है, दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों या आइंदा हालात की पूरी रियायत करके ऐसा कानून वजा करना जो हर कौम, हर मुल्क, हर हाल में अदल व एतदाल की सिफात लिए हुए हो, ये इंसानी फिक्र व नजर से बालातर है। ठीक है, यानी इंसान के पास इतना इल्म और इतनी समझ है ही नहीं कि वो ऐसे कवानीन बना दे जो कि ना सिर्फ ये कि हर जमाने के ऊपर अप्लाई होते हो, बल्कि हर इलाके, हर मुल्क और हर किस्म के हालात के ऊपर भी अप्लाई होते हो। इंसान के बस में ही नहीं है इतना, ये सब कुछ कर, ठीक है, चाहे वो इंसान इकट्ठी ये बात करे ना, इकट्ठे होने से होता है ना कि भाई बहुत सारे लोगों की इंटेलिजेंस और इल्म और तजुर्बात ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप एक ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं, जिसको मशवरा करना भी कहते हैं ना, मशवरा करने से बात अच्छाई आ जाती है। लेकिन इवन सारे इंसान इकट्ठे होकर के भी ऐसा मशवरा करके कवानीन नहीं बना सकते। सिर्फ हक जल्ला व आला शानहू के ही कलाम में ऐसा हो सकता है। इसलिए ये पांचवी सिफत कुरान करीम की कि इसमें बयान किए हुए गुज़श्ता और आइंदा के तमाम वाकयात और वादा वईद सब सच्चे हैं। हक जल्ला व शानहू कौन है? ये वो हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया को बनाया, ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने चूंकि पूरी दुनिया को बनाया है तो उसके अंदर कौन है, कहाँ पर है, उसके क्या अहवाल हैं, ये सब अल्लाह ताला ने ही बनाया है। अच्छा, एक तो हो गया ना, एक दफा बना दिया, अब उनको छोड़ दिया कि अब आप अपनी मर्जी से काम करें, नहीं, बल्कि वो जो कर रहे हैं वो भी अल्लाह ही करवा रहे हैं। ठीक है, यानी चूंटी को बना दिया, अब उसको छोड़ दिया, चलो भी चूंटी अब अपनी मर्जी से अब जाना जहां जाना चाहे वहां जाएगी, नहीं, बल्कि चूंटी कहीं भी जा रही है तो वो अल्लाह की इजाजत और अल्लाह के इल्म के साथ ही जा रही है। ठीक है, ये तो चूंटी है ना, हत्ता के इवन बैक्टीरिया और वायरस भी वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की इजाजत के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कोई पत्ता वो हिल नहीं सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बनाया, फिर अल्लाह ताला चला भी रहे हैं, और जो कुछ, यानी ये तो हो गया ना कि मखलूक बनाई, कायनात बनाई, और फिर उसके बाद जो अदवार हैं, जो वक्त है, ठीक है, यानी वक्त पास होता है तो फिर क्या होता है, ये जमाना, ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक है, जमाना भी अल्लाह ताला की तख्लीक है। ठीक है, तो हर चीज अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो अब अल्लाह ताला के इल्म से और अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। तो अब ऐसा जो खुदा है, ठीक है, यानी ऐसा ही एक ही खुदा है, एक ही खुदा है और वो ऐसा है, तो अब उसके लिए कवानीन बनाना कौन सा मुश्किल काम है? ऐसे कवानीन बनाना जो हर जगह अप्लाई होते हो, एप्लीकेबल होते हो, और हर दौर हर जमाने में एप्लीकेबल होते हैं, उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? बहुत आसान तरीन बात है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसी ने तो बनाया सब कुछ, ठीक है। तो फरमाते हैं कि कुरान करीम के ये पांचवी सूरत ना, कि इसमें बयान किए हुए गुज़श्ता और आइंदा के तमाम वाकयात और वादा वईद सब सच्चे हैं, इनमें खिलाफ वाक़ होने का अदना शुबो नहीं हो सकता, और इसके बयान किए हुए तमाम अहकाम पूरी दुनिया और क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए अदल व एतदाल दिए हुए हैं, ना इनमें किसी पर जुल्म है, ना एतदाल व मियाना रवी से सिर मुंह तजावुज है। सिर मुंह हमारे बुजुर्ग भी इस्तेमाल किया करते हैं, बड़ा उर्दू जुबान का एक मुहावरा, के जरा बराबर भी इसमें एतदाल और मियाना रवी से तजावुज नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। ये बजाय खुद कुरान के कलाम इलाही होने का मुकम्मल सबूत है। तो अब ये तो बजाहिर एक दावा लगता है ना, लेकिन इस दावे को फिर कौन प्रूफ करता है जो कि तहकीक करता है, यानी अपने दल अपने तजुर्बे मुशाहदे के जरिए से, कि भाई ये जो कवानीन हैं ये 1400 साल तो गुजर गए ना उनको उतरे हुए, ठीक है, उनको नाफिज होए हुए इंसानी मुआशरे के अंदर, तो ये आज भी उसी तरीके से, और जो उनको ना मानने वाले हैं उनको भी मानना पड़ जाता है कि वाकई इसी जरिए से जो है ना इंसानी मुआशरे के अंदर अमनो सुकून और लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत, और हत्ता के सिर्फ मुआशरे का इत्मीनान नहीं बल्कि अफराद के भी अंदरूनी ईमान अंदरूनी इत्मीनान, ये भी इसी मुआशरे इसी इस्लामी मुआशरे के अंदर ही होता है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चल रहा हो। तो मानने वाले तो मानते ही हैं, लेकिन ना मानने वालों को भी मानना पड़ जाता है। छठी सिफत ये बयान फरमाई कि छठी सिफत, एक मिनट, अच्छा, इससे रिलेटेड एक जिमनी बात जो थी वो जुमे के दर्स के अंदर काफी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इस वजह से हम उसको रिपीट अभी नहीं कर रहे हैं। वो जिमनी बात यही थी कि अल्लाह ताला के अहकामात जो है ना वो तो 1400 साल पहले नाजुल हो गए, लेकिन इन अहकामात की मौजूदा हालात में एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी, या इनका इनके ऊपर तामुल, उर्दू में तो एप्लीकेशन का तर्जुमा तामुल से ही बनता है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी है यानी अमल के काबिल होना, तो इस दौरे जमाने में अमल के काबिल होना, इसके लिए ये तरीका नहीं है कि अल्लाह ताला आसमान से अर्श से उतर करके नीचे आए और हमें बताएं कि भाई इस जमाने में तुमने मेरे अहकाम पे ऐसे अमल करना है और ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने उतर के नहीं बताना, ये तो नहीं बताना ना अल्लाह ताला ने उतर के, ना नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा मुबारक से बाहर निकल करके हमें बताना है कि इस जमाने में जो है ना तुम जो कुरान के अहकाम थे बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, अब जो है वो नई नई चीजें ईजाद हो गई हैं, और हत्ता के लोगों के रहने सहने का अंदाज जो है वो बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले में बदल गया है, ठीक है, कपड़ा भी जो हम पहनते हैं वो वैसा लिबास नहीं होता जैसे कि पहले पहनते थे, उस तरह के मटेरियल का बना हुआ नहीं होता, डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ होता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने रोजों से निकल करके हमें नहीं बताते ना, वरना तो हर जमाने फिर तो नबी अलैहिस्सलाम को मुस्तकिली रोजे से बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जमाना तो मुस्तकिल चेंज हो रहा है, जमाने में नई चीजें तो मुस्तकिल आ रही हैं, तो फिर उसके लिए अल्लाह के नबी को तो फिर दुनिया में ही मौजूद रहना चाहिए था ना, वापस कब्र में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसा अल्लाह ताला ने सिस्टम नहीं बनाया, वरना अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे कि नबी के ऊपर मौत नहीं आती, अल्लाह ताला क्या नहीं कर सकते थे ये वाला काम कि नबी पर मौत नहीं आती, बाकी सारे लोग मरते रहते नबी नहीं मरता, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी के ऊपर भी मौत लाई और नबी को भी जो है वो पर्दे के पीछे पहुंचा दिया, हिजाब बरजख के उस तरफ पहुंचा दिया, तो अब फिर ये कैसे पता चलेगा कि इस हालात में फिर अल्लाह के हुक्म के ऊपर कैसे अमल करना है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने उम्मत के अंदर उलमा और मशायख का सिलसिला जो है वो जारी फरमाया, ठीक है, जो कि इल्म की रोशनी में इज्तिहाद करते हैं और बताते हैं कि भाई इस चीज से आपने महफूज रहना है, वरना अगर आप इससे महफूज नहीं रहेंगे तो आप जो है वो अल्लाह के जो बुनियादी अहकामात 1400 साल पहले नाजिल हुए थे आप उनको तोड़ने वाले बन जाएंगे। जैसे जुमे के दर्स में बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने ला तकरबु जिना का हुक्म दिया लेकिन ला तकरबु टैब का हुक्म नहीं दिया, ला तकरबु इंटरनेट का हुक्म नहीं दिया, ला तकरबु स्क्रीन का हुक्म नहीं दिया, ठीक है। ये हुक्म तो कुरान मजीद में नहीं मिलेंगे ना। तो अब कोई बेवकूफ आदमी कहे कि टैब और स्क्रीन और इनसे तो इनसे बचना या इनसे एहतियात करने की जरूरत ही कोई नहीं है क्योंकि कुरान मजीद में तो इसका हुक्म नहीं है, ठीक है। तो उस बेवकूफ आदमी को ये कहा जाएगा कि भाई अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो क्या है कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि आप ईमान वालों से कह दें कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ठीक है। अब अगर आप टैब देख रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो ऐसी चीजें आ रही हैं कि जो कि देखना हराम है, ठीक है, तो फिर इस हुक्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा? फिर टैब को दूर रख करके अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, या कम से कम ऐसे इंसान के हाथ में देना कि जो कि अपनी निगाह पे बिल्कुल ही काबू नहीं रख पा रहा है। तो ये ता ला तकर ये यगुद्दू मिन अबसारिहिम के तहत ही ये चीज आएगी ना, ठीक है, कि भाई निगाहों की हिफाजत करना फर्ज है, अल्लाह ताला का हुक्म है, तो इस वजह से अपने आप को उससे बचाना, या जो अपने ऐसे लोग हैं रिश्तेदार खानदान छोटे बच्चे तो उनको जो है वो उनसे बचाना, ठीक है। तो इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कुरान में तो कहाँ लिखा हुआ है कि टैब बच्चों को ना दो, कुरान में तो नहीं लिखा हुआ कि टैब बच्चों को ना दो, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई ये जमाने में उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है ना वो नई है, नई यानी न्यू, ठीक है, पहले नहीं थी, लेकिन बुनियाद पे हुक्म है कोई ना कोई कि जिसके ऊपर अमल के लिए आपको आज किसी चीज के ऊपर अमल करना या किसी चीज से एहतियात करना ये लाजमी है, ठीक है, वरना आप बुनियादी हुक्म को तोड़ने वाले बन जाएंगे। तो बस यही फर्क है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें नई नवेली बात नहीं है, ये हर जगह यही चीज अप्लाई होती है, मेडिकल साइंस में भी यही चीज अप्लाई होती है, हत्ता के फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी यही चीज अप्लाई होती है, ठीक है, कि फिजिक्स के भी जो है ना वो कुछ बुनियादी उसूल किताबों में लिखे हुए होते हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, लेकिन जब आप मशीनरी वगैरह बनाते हैं तो वहां पर उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है, उनकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो वो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल जो हैं तो वो तो आपको मशीन के ऊपर लिखे हुए नजर नहीं आ रहे होते हैं ना, लेकिन मशीन जिन जिस तरीके से चल रही होती है तो फिर वही जो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं वो उन्हीं के हिसाब से चल रही होती है ना। अगर आप उसका इनकार करते हैं और कहें कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि मशीन को इस तरीके से चलना चाहिए, तो फिजिक्स की किताब में तो मैंने ये नहीं पढ़ा था कि मशीन को इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो अब आप जो है ना वो अपनी मर्जी से मशीन को हैंडल करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि भाई जो आपको समझा रहा है कि नहीं आप मशीन को इस तरह से हैंडल नहीं करें बल्कि इस तरह से हैंडल करें, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के बुनियाद पर ही समझा रहा है ना। आप कहें कि नहीं, बुनियाद में तो ये बात नहीं लिखी हुई, तुम किधर से ये बात बोलना शुरू हो गए, तो आप उसके खिलाफ करेंगे तो फिर मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है, मशीन टूट जाएगी, मशीन फंक्शन करना छोड़ देगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको जो बात बता रहा था वो अपनी तरफ से नहीं बता रहा था, वो अपने इल्म की बुनियाद पर जो बुनियादी कवानीन थे उन्हीं की एप्लीकेशन बता रहा था, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर आप नहीं मानेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ फिजिक्स की किताब में जो चीज लिखी हुई है ना मैं सिर्फ वो मानूंगा, तो फिर क्या होगा, काम नहीं होगा, आपका जो फायदे की चीज थी वो खराब हो जाएगी, वो अनफंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक और बड़ी आसान, ये तो बड़ी मुश्किल सी मिसाल है, मुझे भी इतना कोई, मैं इंजीनियर तो हूं नहीं, जिस वजह से इंजीनियरिंग की मिसाल जो है ना वो हमने कुछ इंजीनियर दोस्तों से कहा था कि भाई आप जरा कुछ लिख करके दें, तो वो कर रहे हैं शायद उसके ऊपर काम। लेकिन एक और मिसाल है जैसे कि न्यूट्रिशन की, अभी शायद हम उम्र खानदानी में भी न्यूट्रिशन वाला जो है ना वो शुरू कर दें बयान, परसों से। बहरहाल न्यूट्रिशन की एक मिसाल है कि भाई जैसे मेडिकल साइंस ने बताया कि जो फलाना वाइटामिन जो है ना वो इंसान के लिए जरूरी है, ठीक है, तो पुराने जमाने में वो वाइटामिन जो है ना वो सब्जियों से मिल रहा था, तो लोग खा रहे होते थे, किसी को पता भी नहीं होता था कि उसके अंदर ये वाला वाइटामिन होता है, लेकिन वो सब्जी आपको अच्छी मिकदार में मिल रही थी तो आपके अंदर उस वाइटामिन की कमी पैदा नहीं होती थी, ठीक है ना। अब इस जमाने में आपको वो सब्जी मिल नहीं रही, या जो है वो यानी ऑर्गेनिक शक्ल में नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है ना, तो अब खाने पीने की चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई है, तो अब आपको वो वाइटामिन जो है ना वो उस सब्जी के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है, तो अब जो है वो किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया वाइटामिन पिल्स कि भाई आपको ये पिल्स खानी पड़ेंगी, तब आपके बदन के अंदर जो वाइटामिन की कमी है वो पूरी होगी। तो अब आप कहें कि ये पिल किधर से आ गई, ये डॉक्टर साहब ने मुझे वाइटामिन की टैबलेट खाने के लिए क्यों क्यों कह दिया है, जबकि हमारे जो परदादा होते थे वो तो कहते थे कि ये इस सब्जी के अंदर मिलती है, तो पिल का तो कहीं जिक्र नहीं था उसके अंदर वाइटामिन की, गोली का तो कहीं जिक्र नहीं था, दादा अब्बू ने तो ये बात हमें कभी भी नहीं बताई कि जी जो है वो गोली खाने से आपको वाइटामिन की कमी पूरी हो गई, वो तो सब्जी की बात करते थे। तो अब आप अगर डॉक्टर की बात मानने से इनकार कर देंगे कि भाई ये तो असल में कहीं मौजूद नहीं था इस वाले गोली का जिक्र वाइटामिन डेफिशिएंसी के लिए, तो फिर क्या होगा कि इस दौरे जमाने में आपको वो वाली सब्जी नहीं मिल रही है, तो अब आपको डॉक्टर की बात मान करके टैबलेट ही खानी पड़ेगी भाई, और वो अगर आपने नहीं मानी तो क्या होगा, आपके अंदर वो डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिर आपकी कोई और किस्म की बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि जैसे कि यानी हम कहें कि जी ये हुक्म कुरान में किधर है, वो एक कुरान में नहीं है अगर वो उन अल्फाज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बुनियाद तो कुरान में ही है ना कि भाई ये वाइटामिन चाहिए आपको, या ये जो फलानी चीजें ये नुकसानदेह आपके लिए। अब आज का कोई डॉक्टर अपने इल्म की रोशनी में आपको आज की हालात में बता रहा है कि ये काम तुम मत करो, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो कुरान का हुक्म दिखाओ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आज की एप्लीकेबिलिटी को रद्द करेंगे, तो दरअसल आप बेसिक्स को रद्द करने का ही मुजरिम बनेंगे, ठीक है, बेसिक्स को रद्द करने के मुजरिम बन जाएंगे या मुर्तकिब हो जाएंगे। आज की एप्लीकेबिलिटी या तआमुल को रद्द करने से आप दरअसल बुनियाद को रद्द करने का कि मुर्तकिब बन जाएंगे, और जब बुनियाद को रद्द करने के मुर्तकिब बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, बुनियाद कहां से आई, अल्लाह से आई। एप्लीकेबिलिटी तो लगता है ना कि जैसे मौलवी साहब बता रहे हैं, अल्लाह नहीं बता रहा एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि अल्लाह ने आके तो टैब के बारे में नहीं बताना आपको ना, तो मौलवी साहब बता रहे हैं ना टैब के बारे में, या शेख साहब बता रहे हैं, तो इंसान को ऐसा लगता है कि शेख साहब जो है ना वो आज के हालात में जो मुझे मना कर रहे हैं तो ये तो शेख साहब का हुक्म हुआ, और शेख साहब जो है ना उनके पास तो इतनी ताकत है नहीं कि अगर मैं उनका हुक्म नहीं मानूंगा तो मुझे वो सजा देंगे, उनके पास तो इतनी ताकत है नहीं कि वो मुझे सजा दें, इस वजह से कुछ नहीं होता, इस वजह से हुक्म ना मानने से कुछ नहीं होता, है ना भाई सब। आप माशाल्लाह ना आपको भला करे, आप तो ऐसे नहीं समझती होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि भाई शेख साहब की बात जो है ना जो कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई ये काम आप ना करें या आपको नुकसानदेह हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे टीवी, टीवी घर में रखी हुई है देखे चले जा रहे हैं, ठीक है, अब शेख साहब ने कहा कि टीवी जो है ना वो तो ईमान की टीवी है, ट्यूबरक्लोसिस, उसको आप घर से निकालेंगे तब बात बनेगी, आप कहें कि भाई अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया था टीवी को घर से निकालने का, ठीक है ना, कुरान मजीद में तो टीवी का कहीं जिक्र नहीं है, तो अब ये जो शेख साहब मुझे कह रहे हैं कि टीवी को घर से निकाल दो, तो अगर मैं इनकी बात नहीं भी मानूंगा ना तो कौन सा अदाब आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो मैंने नहीं तोड़ा ना, मैंने तो सिर्फ शेख साहब का हुक्म तोड़ा है, तो मेरे ऊपर कौन सा अदाब आ जाएगा, क्योंकि शेख साहब तो अदाब नहीं ला सकते, बात समझ में आ रही है, शेख साहब तो अदाब नहीं ला सकते, शेख साहब के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जो है वो मुझे सजा दे सके, तो इस वजह से शेख साहब का हुक्म तोड़ना कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज इट्स नॉट अल्लाह का हुक्म, ठीक है ना भाई। लेकिन शेख साहब जो ये बात कह रहे थे, क्या ये इन्होंने कोई नया दीन इजाद करके आपको ये बात कह रहे थे कि ये मेरा दीन है, मेरे दीन पे अमल करो वरना वरना कुछ हो जाएगा तुम्हारा? नहीं, शेख साहब ने कोई नया दीन तो नहीं इजाद किया ना, ठीक है। वो होते हैं, वो फिर उलमाए सू कहलाते हैं जो नया दीन इजाद करते हैं ना। लेकिन आपने तो शेख साहब को इसीलिए अपना शेख बनाया ना कि वो उलमाए सू में से नहीं है, बल्कि वो उलमाए हक में से है जो नया दीन नहीं बनाते। तो भाई उन्होंने जो आपको टीवी निकालने का मशवरा दिया या आपको हुक्म दिया, चाहे मशवरा हो चाहे हुक्म हो, वो भाई जो अल्लाह का दीन था उसी की बुनियाद पर दिया है ना। तो अब आप शेख साहब का हुक्म नहीं मान रहे तो आपको लग रहा है कि शेख साहब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही कि भाई शेख साहब अल्लाह ही के हुक्म को आपकी जिंदगी में अप्लाई करके बता रहे हैं। तो अब आप जो ये बात नहीं मानेंगे तो दरअसल आप अल्लाह का हुक्म तोड़ने वाले बनेंगे, और फिर जब अल्लाह का हुक्म तोड़ने वाले बनेंगे तो फिर क्या अल्लाह भी सजा नहीं दे सकता? क्या अल्लाह के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो फिर आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दे? क्या अल्लाह के लिए भी ये मुश्किल बात है? शेख साहब के लिए तो ये नामुमकिन है, बेशक शेख साहब के लिए तो ये बात नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए क्या ये बात मुश्किल भी है? मुश्किल तो नहीं है ना, अल्लाह ताला के लिए तो इंतहाई आसान है कि वो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दे, और फिर बनी भी होती है सब। यानी ये तो नहीं कि भाई नहीं बनाते अल्लाह ताला, बनी भी है जहन्नुम तो बनी हुई है ना फिर सबकी जिंदगी, किसी की किसी शक्ल में जहन्नुम बनी हुई है, किसी की किसी शक्ल में जहन्नुम बनी हुई है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया, तो हमने क्या किया है, हम तो बहुत नेक आदमी है, हम तो फलाए नहीं, तो ये ऐसे नहीं होता ना। तो भाई अल्लाह के जो कवानीन है वो ता कयामत एप्लीकेबल है, लेकिन कैसे, कि जो उलमा हैं जो मशायख हैं वो उसकी एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है। तो हमें अकल के नाखून लेने चाहिए कि हम उधर जो है ना फिर अपनी छोटी सी निक्की सी अकल जो है ना वो इस्तेमाल करके हम कहते हैं नहीं 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 मैं मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। भाई आप अगर आपके पास अगर इल्म होता तो आप खुद शेख बन जाते हैं ना। अगर आपके पास इतना इल्म होता कि आप अल्लाह के अहकाम को हालात हाजरा के मुताबिक मुंतबिक कर सकते, अप्लाई एप्लीकेबल बना के समझा सकते, तो आप खुद ही शेख बनते हैं ना फिर, राइट। फिर आपको भी इजाजत खिलाफत मिलती है, आपको भी जो है वो ये हुक्म होता मशाइख की तरफ से कि आप लोगों में दीन का काम करें, लेकिन आपने इतना इल्म हासिल ही नहीं किया, आपने इतनी समझ हासिल ही नहीं करी। कैसे हासिल करते हैं, कैसे समझ हासिल करते हैं, वो तो अल्लाह वालों के सामने अपने आप को सुपुर्द करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर ये समझ और इल्म हासिल, आपने ये सब कुछ किया ही नहीं कि अल्लाह आपको ये इल्म अता फरमाता, ठीक है। तो अब अपनी अकल इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे नहीं, दिस इज टू एक्सट्रीम, दिस इज टू मच, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ये, दिस इज वो, ये बोलते हैं फिर आकर के। फिर ठीक है, जाओ अपनी मर्जी चलाओ, फिर उसके बाद अपनी मर्जी जाओ तुम, अपने अपनी मर्जी के मुताबिक दीन चलाओ अपना, फिर क्यों आते हो बार बार, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं रोना रोने के लिए खाली कि जी ये हो गया और वो हो गया और औलाद नाफरमान हो गई और औलाद गुनाहों के रास्ते में पड़ गई और औलाद ने ये कर दिया, औलाद ने वो कर दिया, और कुछ लोग आते भी नहीं है फिर उसके बाद, फिर उनके लिए तो लंबा ही आगे का चल जाता है, फिर वो बिल्कुल ही दूर भाग जाते हैं ना, वो शैतान के बिल्कुल ही रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई पहले बात मान लेते तो ये नौबत ना आती ना, उस वक्त आप हल्का लेते हैं कि नहीं जी शेख साहब का हुक्म तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसे तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुदा के थोड़ी है। बेशक वो खुदा नहीं है, लेकिन वो जो आपको हुक्म बता रहे हैं वो खुदा का हुक्म बता रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, ये बात बहुत कॉमन है, अपनी चलाते हैं अपनी जो है ना वो, यानी कम फहमी या गलत फहमियों को जो है वो सही समझ करके उसको अमल कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला फिर वो होता है ना टाइम, कुछ टाइम अल्लाह ताला बर्दाश्त करते हैं, मौका देते हैं, तौबा कर ले तौबा कर ले तौबा कर ले, लेकिन नहीं तौबा करते, चलाते रहते हैं अपनी मर्जी, तो बिलाखिर फिर उसके बाद पकड़ आ जाती है। आगे फरमाया छठी सिफत ये बयान फरमाई कि ला मुबद्दिला निकलिमाती, यानी अल्लाह ताला के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। बदलने की एक सूरत तो ये हो सकती है कि कोई इसमें गलती साबित करे, इसलिए बदला जाए, या ये कि कोई दुश्मन जबरदस्ती उसको बदल डाले। अल्लाह ताला का कलाम इन सब चीजों से बालातर और पाक है, ठीक है? यानी अल्लाह ताला का कलाम गलती से भी पाक है और इस कमजोरी से भी पाक है कि कोई ताकतवर आकर के इसको जबरदस्ती बदल डाले। ये भी कमजोरी है ना कि कोई आकर के आपको तब्दील कर दे, आपकी कमजोरी हुई ना। अल्लाह के कलाम में क्या ये कमजोरी है कि कोई आकर के इसको जबरदस्ती बदल दे? नहीं। तो अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, यानी हमने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। अल्लाह मुहाफिज है किसी का, फिर किसी की मजार किसकी मजार है कि खुदा की हिफाजत को तोड़कर उसमें कोई तगैयुर तबद्दुल कर सके। चुनाचे 1400 बरस इस पर गुजर चुके हैं और हर कर्न यानी हर जमाने में कुरान के मुखालिफ उसके मानने वालों की निस्बत तादाद में भी ज्यादा रहे हैं, कुव्वत में भी ज्यादा रहे, मगर किसी की मजाल नहीं हो सकी कि कुरान मजीद के एक जबर जेर में भी फर्क पैदा कर सके। तो हिस्ट्री में उमूमी तौर पर तादाद हमेशा गैर मुस्लिमों की ज्यादा ही रही, और ये एक अलग तफसीर है इसके अंदर, अब इसको शुरू नहीं करना चाहता। तो बहरहाल ये जो लिखा है जत नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है कि हमेशा मुसलमान कम ही रहे हैं, लेकिन कोई बदल नहीं सका अल्लाह के कलाम को। हाँ, बदलने की एक तीसरी सूरत ये भी हो सकती थी कि खुद हक तआला की तरफ से उसको मनसूख करके बदल दिया जाए। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इस आयत में इसकी तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद नस्ख का कोई एहतमाल नहीं, जैसे कि कुरान करीम की दूसरी आयत में यह मजमून और भी ज्यादा वजाहत के साथ आया है, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त तो अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात को मनसूख किया और कुछ आयात को मनसूख किया, ये दो अलग अलग तरह के नस्ख हुए अल्लाह ताला की तरफ से हुए, ठीक है? और इसकी अलग एक्सप्लेनेशन है कि क्यों मनसूख किए, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला अहवाल को बदल रहे थे और अल्लाह ताला पहले के अहवाल के मुताबिक एक हुक्म नाजिल किया, फिर अल्लाह ताला ने अहवाल बदल दिए तो फिर दूसरा हुक्म नाजिल किया, ठीक है? तो पहले ही जो है वो अहवाल क्यों नहीं बदल दिए थे? अहवाल पहले बदल देते तो हुक्म को फिर मनसूख करने की जरूरत ना पड़ती। भाई अल्लाह की मर्जी, आप कौन होते हैं अल्लाह को मशवरा देने वाले कि आपने पहले क्यों नहीं बदला अहवाल को, बाद में क्यों बदला अहवाल को? भाई अल्लाह की मर्जी, पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि अहवाल पहले मुख्तलिफ थे तो ये हुक्म नाजिल किया, फिर जो है जैसे मिसाल के तौर पर कुछ कुछ शरी सजाएं, वो पहले उनकी शक्ल डिफरेंट होती थी, बाद में उन शरी सजाओं की शक्ल डिफरेंट हो गई, ठीक है? तो भाई ये क्यों चेंज किया? जाहिर है अहवाल के हिसाब से चेंज किया, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं चंद क्लासेस पहले, ठीक है? जैसे पर्दे की बात हुई थी कि पहले इंसानों के अहवाल ऐसे थे कि वो औरत मर्द इख्तलात को हैंडल कर सकते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अहवाल ऐसे बदल दिए अब हैंडल ही नहीं कर सकते, तो पर्दे का हुक्म साथ साथ नाजिल किया। अहवाल जिस वक्त बदला उसी वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया, ठीक है? तो भाई अल्लाह ताला अहवाल पहले ही बदल देते ताकि हुक्म दोबारा ना नाजिल करना पड़ता। तालिब इल्माना तौर पर यह सवाल आ सकता है किसी के जहन में, तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि भाई अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें आजमाइश के लिए पैदा किया, ठीक है? टेस्ट करने के लिए पैदा किया, और टेस्ट किस चीज का? कि भाई मेरे जो अहकामात मेरे नबी के वास्ते से तुम्हें पहुंच रहे हैं तो क्या तुम उनको मानते हो या अपनी चलाते हो, ठीक है? तो एक तो ये हो गया ना कि जो अहकाम आया उसको माना, और इसके ऊपर एक दूसरा टेस्ट ये हो गया कि नबी ही ने वो अहकाम अल्लाह के बताए और फिर नबी ही ने उन अहकाम को चेंज किया, ठीक है? यानी अहकाम को चेंज तो अल्लाह ने किया लेकिन नबी ने फिर वो चेंज अहकामात लोगों को बताए। अब ये टेस्ट हो गया इस बात का कि नबी की बात पर कौन एतमाद करता है, कौन एतमाद। यानी मिसाल बहुत सादा सी इसकी मिसाल जो है ना वो है तहवील क़िबला। तहवील क़िबला पहले नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को बताया ना कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके तुम नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, ये किसने बताया कि बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है? किसने बताया? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। फिर उसके बाद कई साल गुजरने के बाद मुसलमान मुस्तकिल पढ़ रहे हैं बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज, हत्ता कि मदीना मुनव्वरा हिजरत करके पहुंच गए, वहां भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे। फिर एक दिन नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अब जो है ना वो काबतुल्लाह मक्का मुकरमा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म आ गया है, मक्का मुकरमा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का। अब इसमें अकल के पुजारी वो कहें ये क्या बात हुई भाई, पहले जो है वो किबला आपने कहा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ, अब जो है ना आप कह रहे हैं कि काबतुल्ला की तरफ, तो ये तो नहीं समझ में आ रही ना भाई, किबला तो एक ही होता है, ये क्या भाई आप जो है वो तब्दील कर दिया आपने किबला उठा करके। तो ये अकल के पुजारी हुए ना, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करने वाला कभी ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन सहाबाए कराम सारे नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करने वाले थे, अपनी अकल के पुजारी नहीं थे, तो सबने जो है वो तहवील क़िबला के ऊपर अमल कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी तो एक हुक्म ही था ना अल्लाह का, तो पुराना हुक्म मनसूख हो गया और नया हुक्म आ गया। उसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी और भी अहकाम इस तरह से हैं, जो कि पहला मनसूख हो गया उसके बाद दूसरा आ गया, तो एतमाद करने वालों ने बात मान ली। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये दीन मुकम्मल हो गया अहकाम का, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अब उसके बाद ये दीन मुकम्मल हो गया, अब कोई मनसूख नासिख का सिलसिला आया ही नहीं उसके बाद। फिर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब वही का सिलसिला ही बंद हो गया। ठीक है, तो वही हजरत ने यहाँ पे लिखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इस आयत में इसकी तरफ भी इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और कुरान आखिरी किताब है, यानी अल्लाह ताला के अहकामात मुकम्मल हो गए कुरान कुरान मजीद के साथ और नबी अलैहिस्सलाम के साथ, इसके बाद नस का कोई एहतमाम कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जैसे कि कुरान करीम की दूसरी आयत में भी मज़मून और भी ज्यादा वजाहत के साथ आया है। आखिरी आयत में फरमाया वहुवा समीउल अलीम, यानी अल्लाह जल्ल शानहु इस तमाम गुफ्तगू को सुनते हैं जो ये लोग कर रहे हैं, असमीउल अलीम, और सबके हालात और इस असरार से वाकिफ हैं, यानी जो उनके जाहिरी हालात हैं उनसे भी वाकिफ हैं, और असरार कौन से जो कि इन्होंने अपने अंदर दिल में छुपाए हुए हैं उनसे भी अल्लाह ताला वाकिफ है, हर एक के अमल का बदला उसके मुताबिक देंगे। ठीक है, तो असमी और अलीम तो अल्फाज में मौजूद है ना, हालात से भी इल्म रखते हैं और समी जानी सुनते भी हैं, लेकिन ये तो नहीं किस कहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि अमल का बदला उसके मुताबिक देंगे, ये कहाँ से लिख दिया फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने? इसी को तफसीर कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने असमी और अलीम का यहाँ पे जिक्र किया वो यही बताने के लिए जिक्र किया कि भाई मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, और मैंने जो है ना फिर कयामत के दिन इनको उसके हिसाब से बदला देने, बल्कि कयामत से पहले ही दुनिया में ही इनको बदला देना मैंने शुरू कर दिया है। तीसरी आयत में हक ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि जमीन पर बसने वाले बनी आदम की अक्सरियत गुमराही पर है। गुमराही पर है का मतलब क्या कि मेरे नबियों की बात अक्सरियत ने नहीं मानी। ठीक है, तो नबियों की बात मान करके ही सीधी रास्ते पर आना मुमकिन था, अगर नहीं मानी तो अब सीधा रास्ता मुमकिन ही नहीं है कि अपनी अकल से सीधे रास्ते पर चल सके कोई बगैर नबियों की बात माने हुए। तो जिसने बात नहीं मानी फिर वो ऑटोमेटिकली गुमराह हो गया, यानी राह से गुम हो गया, सीधी राह उसने गुम कर दी और वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। तो आप ना इस बात से मरऊब ना हो, यानी इनकी अक्सरियत से मरऊब ना हो, उनकी बातों पर कान ना धरे, ये जो चाह रहे हैं ना आपको फोर्स करके अपनी मर्जी चलवाना आपसे, इनकी बातों पर कान ना धरे। कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर इस मज़मून को बयान फरमाया है, जैसे एक जगह इरशाद है वलकद वल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, के तहकीक के इसका मतलब क्या है कि इनसे पहले भी जो लोग आए थे ना, अव्वल लोग, उनकी अक्सरियत जलालत में मुब्तला थी। गल्ला का मतलब गुमराह, ठीक है? तो पहले भी लोगों की अक्सरियत गुमराह ही थी। दूसरी जगह इरशाद है, वमा अक्सरु नासी वलो हरस्ता बिमुमिन, वमा अक्सर। तो इसको समझने की खातिर अगर हम ऐसे पढ़े ना, वमा अक्सरु नासी बिमुमिनी, बल्कि वमा अक्सरु नासी मोमिनीन कहना पड़ेगा फिर उसके लिए। जाहिर अरबी जुबान और कुरान मजीद के एजाज के मुताबिक तो ये आयत नहीं है, लेकिन समझने की खातिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इंसानों की अक्सरियत मोमिनीन नहीं है। इंसानों की अक्सरियत बात मानने वाली नहीं है। वलो हरस्ता, वलो हरस्ता का मतलब क्या हुआ कि आप कितना ही चाहें, आप कितना ही इस बात के हरीस हों, ठीक है? हरीस का लफ्ज उर्दू जुबान में ना मनफी माने में इस्तेमाल होता है, लालची, हरीस। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हरीस का लफ्ज जो है वो पॉजिटिव माने में इस्तेमाल किया, कि आपके दिल में कितनी ही तमन्ना हो कि ये लोग आपकी बात मानने वाले बन जाएं, लेकिन ये नहीं बनेंगे, माने इनकी अक्सरियत नहीं बनेगी, ठीक है? हाँ, मानने वाले बने, सहाबा कराम ईमान लेकर के आए, वो मानने वाले बन गए, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं बात मानी, ठीक है? तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकाम पर अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई है। मतलब ये है कि आदतन इंसान पर अददी अक्सरियत का रोब गालिब हो जाता है और उनकी अतात करने लगता है, ठीक है? तो भाई जो अक्सरियत वाले लोग हैं ना, तो वो ज्यादा सही होंगे, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक बात को मान रहे हैं तो फिर वो सही होगी, ठीक है? नहीं, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया है कि दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें, क्योंकि वो अकायद और नजरियात में महज ख्यालात और अवहाम के पीछे, यानी वहम के पीछे चलते हैं, और अहकाम में महज तखमीना और अटकल से काम लेते हैं, ठीक है? यानी बेबुनियाद अजम्पशन से काम लेते हैं कि भाई अल्लाह का ये हुक्म होना चाहिए और अल्लाह का वो हुक्म होना चाहिए, हालांकि उनके पास कोई दलील नहीं है जो प्रूफ कर सके वो, तो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है वो महज तखमीने और अटकल से काम लेते हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। तो तखमीन और अटकल क्या चीज होती है? बेबुनियाद चीज। और इल्म क्या चीज होती है? वो जिसकी बुनियाद, ठीक है? जैसे कोई कहे कि सूरज है, सूरज है, तो ये जो बात है ये इल्मी बात कहलाएगी, क्योंकि सूरज है, वाकई है। और कोई कहे सूरज है ही नहीं, सूरज नहीं है, बस लोगों ने बना लिया है सूरज के बारे में बातें, तो अब ये जो ये बात कह रहा है तो ये इल्मी बात नहीं कहलाएगी, क्योंकि सूरज का ना होना ये तो नहीं है ना, ये बात कि सूरज नहीं है, भाई सूरज तो है। तो अगर कोई कहे सूरज है तो भाई ये तो इल्म कहलाएगा, लेकिन कोई कहे कि सूरज नहीं है ये इल्म नहीं कहलाएगा, ये तखमीना, अटकल, अजम्पशंस या ख्याली बात, ये सब कहलाएगा, ठीक है? तो कुरान मजीद में ना फिर इसी तरीके से, यानी एक तो बात होती है कि भाई अच्छा, तो फिर ये उलमा की अक्सरियत को क्यों माना जाता है? अगर अवाम की अक्सरियत को आप कह रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए, तो फिर आप उलमा की अक्सरियत को क्यों कह रहे हैं मानने के लिए? भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उलमा जो है ना वो इल्म की बुनियाद पर बात करते हैं, तभी तो वो उलमा कहलाते हैं, तो उनकी अक्सरियत तो मानी जाएगी। अगर यानी फॉर एग्जाम्पल 1,000 उलमा हैं और किसी टॉपिक के ऊपर इल्मी डिस्कशन हो रही है कि भाई इसको आपने हलाल करार देना है कि इसको आपने हराम करार देना है, तो उनमें फिर मेजोरिटी का जो ओपिनियन होगा ना उसको माना जाएगा। इसी को अहले सुन्ना वल जमात भी कहा जाता है, मेजोरिटी उलमा का ओपिनियन वो तस्लीम किया जाएगा, और अगर माइनॉरिटी है उनका उनका एक अलग ओपिनियन है तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो यहां पर तो आप मेजोरिटी को मान रहे हैं, हालांकि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि इन तो अक्सर अमन फिल अर्द युजुल्लू कान सबील अल्लाह, है ना भाई? तो तो फिर आप क्यों कर रहे हैं उलमा की अक्सरियत की बात क्यों मान रहे हैं? भाई कुरान मजीद ने खुद ही इसके आगे बता दिया, ठीक है, तो वजह बता दी कि अक्सरियत जो है ना वो जो आपको गुमराह कर देंगे रास्ते से, वो वाली अक्सरियत की बात हो रही है जो कि इल्मी बात नहीं करते बल्कि जन्नी बात करते हैं, अटकल पिच्चू बात करते हैं, अजम्पशंस की बुनियाद पे बात करते हैं, वो अक्सरियत आपको गुमराह कर देगी, ठीक है, लेकिन इल्म वालों की अक्सरियत आपको गुमराह नहीं करेगी, ठीक है। तो कुरान मजीद की आयत का अगला हिस्सा पहले हिस्से की तफसीर कर देता है, ठीक है, सबसे पहले इसी वजह से कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद से खुद की जाती है, अगर ना मिले तो फिर हदीस मुबारक से की जाती है। बहरहाल तो खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अददी अक्सरियत से मरूब होकर, उनकी किन की जो अजम्पशंस की बुनियाद पे बात करते हैं, ऐसे लोगों की अददी अक्सरियत से मरूब होकर उनकी मुवाफ़त का ख्याल भी न फरमाएं, यानी उनकी बात मानने का सोचे भी ना, क्योंकि ये सब बेउसूल और बेराह चलने वाले हैं, यानी इनका कोई उसूल ही नहीं, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आखिर आयत में फरमाया कि बिल यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उसको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलता है, बस जैसे गुमराहों को सजा मिलेगी सीधी राह वालों को इनामो इकराम हासिल होगा, ठीक है, वो हुआ आलमो बिल मुहतदीन की तफसीर ये हो गई, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो जानता है ना तो सिर्फ ये नहीं कि बस जानता है और कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मानने वालों को जजा देता है, मानने वालों की मदद करता है, और ना मानने वालों को सजा देता है, और ना मानने वालों से अपनी मदद को खींच लेता है, वापस कर लेता है। तो ये दोनों चीजें आलमो बिल मुहतदीन की तफसीर में शामिल हो गए, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात भी है ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर आपको कोई चीज मालूम तो है, बड़े आप इल्म वाले हैं लेकिन बैठे हुए चुपचाप बन करके, है ना, वो कहती ना जो करता वर्ता कुछ नहीं है ना, खामोश बैठा रहता है, बड़ा इल्म है जी इनके पास, ओहो बड़े पीर साहब जो हैं बड़े इल्म वाले हैं लेकिन चुप करके बैठे हुए हैं, तो आपके इल्म का क्या फायदा फिर, चुप करके बैठे हुए हैं ना, तो आप किसी को बता रहे हैं ना आप किसी को अपने इल्म से फायदा पहुंचा रहे हैं कि भाई वो गलत रास्ते पे जा रहा था आप उसको रोकें, आपके इल्म का फायदा तो नहीं हुआ ना फिर, तो ऐसे इल्म का क्या क्या मकसद क्या फायदा फिर, जो के किसी फायदे का ही नहीं। तो अल्लाह ताला का ये इल्म जो है, अगर अल्लाह ताला ना किसी को जजा दें ना किसी को सजा दें तो फायदा क्या है ऐसे इल्म का, ठीक है ना भाई। तो एक बात तो ये बार बार रिपीट हो रही है कि आज के दौर के अंदर सारी मेहनत दजल वालों की यही है कि तुम दीन पे जितना चाहो अमल करो लेकिन गुनाह की सजा को अपने दीन में से निकाल दो, ठीक है ना, ये सजा वजा कोई चीज नहीं होती, जो भी मुसीबत आती है जो भी परेशानी आती है ना, बस ये तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए आती है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, ठीक है, तो इस वजह से ना तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करो, दीन पे दीन का कोई काम करने की तुम्हें अच्छे लगे वो कर लो, दुनिया का कोई काम करना अच्छा लगे वो कर लो, किसी हुक्म पे अमल करना तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, किसी हुक्म को तोड़ना तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, मर्जी है ना भाई, यानी मिसाल के तौर पर पांच नमाजों का हुक्म तुम्हें अच्छा लगे पांच नमाजें पढ़ो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, पर्दा को करना तुम्हें अच्छा ना लगे ना करो कोई मसला नहीं, ठीक है, आसान सी मिसाल यही हो सकती है, खुसूसन खवातीन की क्लास के अंदर हूं, पांच नमाजें पढ़ो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना पांच नमाजें पढ़ना पढ़ो, ठीक है, पर्दा करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना करो कोई मसला कोई थोड़ी है, होगा कोई थोड़ी कुछ, ठीक है, तो इसके ऊपर सारी दुनिया में मेहनत हो रही है जबरदस्त किस्म की, और धोखा दे करके मेहनत हो रही है, वो धोखा ये दे रहे होते हैं कि आपको कंसेशन देते हैं कि आप करें अपने दीन के ऊपर अमल, ठीक है, आप समझते हैं कि अच्छा अब तो जो है ना वो काफिर भी बड़े मुसलमान हो गए हैं या मुसलमानों के हेल्पर्स बन गए हैं, अब तो बड़ा जबरदस्त मतलब तो बेहतरीन टाइम आ गया अब तो ये, ठीक है, कि हुकूमतें भी जो हैं वो अब उलमा के आगे पीछे घूम रही हैं, है ना, हुकूमतें भी जो है वो उलमा को इज्जत देनी शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब मुल्क में इस्लाम आ गया है, या बस आ जाएगा, बस थोड़ा सा रह गया, बाकी भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि वही हुकूमतें जो कि उलमा को बजाहिर इज्जत दे रही हैं, वही बेहयाई और बेशर्मी और झूठ और नशा और वही इसको भी फैला रही हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कुछ मदारिस पैदा हो गए हैं, कुछ मदारिस पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं है लेकिन है कुछ, जो कि हुकूमत से उनको खूब ग्रांट मिलती है, खूब उनको मिलियंस ऑफ रुपीज की ग्रांट मिल रही है आजकल, ठीक है। तो अब जो है ना वो कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि भाई आप हुकूमत से ग्रांट क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तो क्या कहते हैं गलत रास्ते पे चले गए। तो उसके ऊपर वो जवाब ये देते हैं कि अगर हुकूमत मदारिस को ग्रांट दे रही है तो आपको क्या तकलीफ है इसके अंदर, भाई अच्छा काम कर रही है ना हुकूमत, मदारिस को ग्रांट दे रही है, मदारिस के अंदर तो कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अब हुकूमत का जो ये अच्छा काम है ये भी आपको क्यों बुरा लग रहा है, भाई हुकूमत बुरा काम करती है तो ठीक है भाई, बुराई की आप जो है वो तनकीद करें, लेकिन अगर अच्छा काम कर रही है कि मदारिस को मिलियंस ऑफ रुपीज के ग्रांट दे रही है तो आप उस बात पे उनकी तारीफ करें ना। बात समझ में आ रही है क्या, आपकी हुकूमत तो दीनी मदारिस को ग्रांट दे रही है, यानी उनको बड़ी इमदाद दे रही है, तो आपको इस बात पर उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते उनकी तारीफ। क्यों क्यों नहीं करते भी तारीफ, तो दीनी मदारिस को जो ये इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के या मिलियंस ऑफ रुपीस के ग्रांट दे रही है तो हम उनकी तारीफ क्यों नहीं करते, ये जवाब आप बता दें तो हम आपका पीछा छोड़ देंगे आज की क्लास में, ठीक है, यानी क्लास खत्म कर देंगे, आपकी जान छोड़ देंगे। हम क्यों उनकी तारीफ नहीं करते हुकूमत की, हालांकि वो दीनी मदारिस को, और दीनी मदारिस भी वो नहीं, यानी ये नहीं कि वो अहले बिदत के दीनी मदारिस को पैसे दे रही है, या जो गैर मुकल्लद कहलाते हैं उनके दीनी मदारिस को पैसे दे रही है, बल्कि हमारे अपने मसलक के, हमारे अपने देवबंदी दीनी मदारिस को पैसे दे रही है, तो भाई उस पर तो उनकी तारीफ करनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं करते, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, सबके सामने करें ना मैसेज लिखे, उन्होंने प्राइवेटली लिखा है कि वो अपना काम निकलवाने को ये सब ग्रांट देते हैं और अवाम के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए, बस इतनी सी बात है। अपना काम क्या है उनका जिसको निकलवाने के लिए वो ग्रांट देते हैं, क्या काम है उनका, या ये कि हम उनकी तारीफ क्यों नहीं करते, इसका कोई और बात बताए ना। एक सही काम करने से बाकी सारे काम गलत काम सही नहीं हो पाते, तो भाई एक तो सही काम कर रहे हैं ना, एक तो सही काम कर रहे हैं, तो ये तो भाई वही जवाब देंगे ना कि बाकी गलत काम जो है ना वो भी ठीक कर लेंगे, अभी तो एक सही काम कर रहे हैं, तो आप वो जो एक सही काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो उनकी तारीफ करें ना, तो अभी एक सही काम करें, कल को दो सही काम करेंगे, परसों जो है वो तीन सही काम करेंगे, तरसों जो है वो चार सही काम करेंगे, और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100% सही काम करने शुरू हो जाएंगे, तो आप एक के ऊपर उनकी तारीफ करें, ठीक है, हम क्यों नहीं करते हैं? उसकी वजह जो है ना वो यही है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त अहवाल चल रहे हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी दूसरे मुल्कों के अंदर भी, वो सारे के सारे जो है ना वो फितने दज्जाल वाले अहवाल चल रहे हैं, फितने दज्जाल वाले अहवाल चल रहे हैं, ठीक है। और वो फितने दज्जाल वाले अहवाल क्या होते हैं, चलिए ये बता दें अगर, कि फितने दज्जाल वाले अहवाल से मुराद क्या है, क्या है फितने दज्जाल, क्या है वो, उसका मकसद हमें आपस में लड़वाना है, नहीं खाली लड़वाना नहीं होता, बल्कि लड़वाने से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं, लड़वाना असल मकसूद को थोड़ी है, मकसूद तो कुछ और है, खाली लड़वाना मकसूद नहीं है बल्कि मकसूद कुछ और होता है, ठीक है। जिस जो के लड़वाने से हाथ से लोट किया जाता है, होगा चले। फितने दज्जाल क्या है? होगा ट्रांसलेशन ही पूछ रहा है आपसे। दजाल का, दजल का आपने ट्रांसलेशन लिख दिया धोखा। ट्रांसलेशन को तो भी पूछ रहे हैं हम, तो उसकी हकीकत पूछ रहे हैं, उसका मफहूम पूछ रहे हैं। गलत को सही करके दिखाना कितने बच्चा, बस इतना सो। चले उन्होंने जवाब दिया, फितने दज्जाल ईमान का फितना है, ईमान का फितना। इसका क्या मतलब है भाई, ईमान का फितना? जो नजर आ रहा है वो असल में होता नहीं। ईमान का फितना क्या चीज होती है? ईमान का फितना होता है ईमान से महरूम कर, ठीक है, ये ईमान का फितना होता है। ईमान के फितने का मतलब क्या है? ईमान से लोगों को महरूम कर, ठीक है। तो दज्जाल जो है ना, वो इस दुनिया में जो आएगा, और उसका निजाम तो पहले से इस्टेब्लिश होगा ना, फिर वो आएगा ना, उसने तो गोया के ऐसे आना है कि जैसे जब पूरी महफिल सज चुकी होती है ना, फिर मेहमान खसूसी साहब आते हैं। मेहमान खसूसी के आने के बाद महफिल सजनी शुरू नहीं होती, बल्कि महफिल सज चुकी होती है फिर मेहमान खसूसी आते हैं, ठीक है। तो दज्जाल का भी यही मामला है कि दज्जाल की महफिल पहले सजेगी, फिर दज्जाल जाहिर होगा, और वो सिर्फ यानी कोई 124 दिन दुनिया में रहेगा, बस उससे ज्यादा वो नहीं रहेगा। 124 दिन तकरीबन, अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करें, कुछ इतनी ही बनती है तकरीबन ना, उसने तो ज्यादा दिन नहीं रहा ना दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये फितने दज्जाल जो पहले से उसके लिए सजा दिया जाएगा और सजाया जा रहा है, वो क्या है? ईमान का फितना, यानी लोगों को ईमान से महरूम करो, ईमान से महरूम करो, ईमान से महरूम करो, ठीक है। जब मैक्सिमम लोग ईमान से महरूम हो चुके होंगे ना, उस वक्त वो साहब जाहिर होंगे, नाजिल नहीं होंगे, जाहिर होंगे, ठीक है, क्योंकि उसको कैद करके फरिश्तों ने रखा हुआ है, वो उसको कैद से रिलीज कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब मैक्सिमम लोग ईमान से महरूम हो चुके होंगे, तो पूरा फितने दज्जाल का जो स्टेज सेट हो रहा है वो क्या है कि लोगों को ईमान से महरूम करो। कैसे ईमान से महरूम करो? अल्लाह के दीन को तब्दील करवा दो, उनके उनके दिमागों में अल्लाह के दीन को तब्दील करवा दो, ईमान से महरूम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं ना, ये असल में दीन की तब्दीली की मेहनतें चल रही हैं। तो इस वजह से ये जितने इस वक्त अरबाब इख्तदार हैं, ये सब के सब जो है ना, फितने दज्जाल में कंट्रीब्यूट कर, ठीक है, गलत को सही, सही को गलत बना बना करके। अब जब ऐसे लोग, जब ऐसे सलातीन, जब ऐसी हुकूमतें किसी के ऊपर मेहरबान होती हैं, तो वो नेकी की वजह से मेहरबान नहीं होती, बल्कि वो दरअसल अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, मकसद में उनको जो मददगार मिलते हैं ना, वो उसके ऊपर मेहरबान होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही उनकी सारी की सारी मेहनत है कि बस लोगों को ईमान से महरूम किया जाए। अब जो उसमें उनको साजगार नजर आएगा ना, वो उसकी मदद करेंगी, उसको जो है वो पैसे देंगी, उसको जो है वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों का अकीदा ईमान को मजबूत करने के लिए क्या करें, अल्लाह से दुआएं करें और दीन का सही इल्म हासिल करें, दीन का सही इल्म हासिल करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे, ठीक है, उसकी जो इमामत है ना, वो इस मिल्लते बैवा के लिए फितना, ठीक है। तो अब इसमें सलातीन का लफ्ज जो है वो फिर डिफाइन किया जाएगा कि कौन से वाले सलातीन की बात हो रही है। ठीक है, अगर वो सलातीन ऐसे हैं जो कि गुनाहों को प्रमोट करने वाले सलातीन हैं, ठीक है, तो ऐसे सलातीन जो है ना, वो उनका परस्तार होना का मतलब क्या है? फितर। और अगर ऐसे सलातीन हैं जो गुनाहों को रोकने वाले सलातीन हैं, ठीक है, ऐसी हुकूमत है जो गुनाहों को रोकने वाली है, गुनाहों को खत्म करने वाली हुकूमत है, उसका परस्तार करना फितना नहीं है। ठीक है, उसका परस्तार करना फितना नहीं है। परस्तार का मतलब होता है उनका यानी फेथफुल बनाना, फितना नहीं है। लेकिन भाई आप आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते किस किस्म के जो है वो गुनाहों को प्रमोट किया जा रहा है, और बेहयाई को, बेशर्मी को, और मौसीकी को, और हर किस्म की चीज को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, और उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं। तो अब उन लोगों से आप खैर की तवक्को कर रहे हैं कि वो जी दीनी मदारिस को जो है वो ग्रांट देने, तो इसका मतलब है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, नेकी का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने एजेंडा के ऊपर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला बात की समझ आवे, तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।